Mannheim.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
श्रोताओं, कल सांख्यिकी दिवस के मौके पर सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कई खास रिपोर्टें जारी की और इन रिपोर्टों में भारत की जो सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार है, इसके बारे में हमें एक तस्वीर जानने को मिली। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने का एक लक्ष्य रखा है और भारत इस दिशा में कैसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो संकेतक हैं उनमें भारत कैसे अच्छी प्रगति दिखा रहा है। तो आज हम मंत्रालय की जो ये रिपोर्टें जारी हुई हैं उनका एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे मेहमान आज हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
तो सिंह साहब, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, इन तीन मुद्दों पर हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने इन रिपोर्टों में फोकस किया है कि उसमें तेज गति से हमें प्रगति देखने को मिली है। शुरुआत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं सभी देशों के लिए और कैसे भारत इसमें आगे बढ़ रहा है।
देखिए, संयुक्त राष्ट्र में जब 2015 में एक सतत विकास लक्ष्य तय किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2030 तक दुनिया से गरीबी समाप्त करी जाएगी, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और सभी के लिए समृद्ध एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें भारत ने बड़ी पहल की और इसे 2026 तक में ही उसने एक तैयार किया खाका और 277 मानकों पर आधारित 17 SDG जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किया और इसमें जो बनाया गया वो सबसे पहला है गरीबी समाप्त करना, यानी सभी तरह की गरीबी को हर जगह से उन्मूलन इसका किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत मेहनत से पूरे देश में इसको लागू किया है। और इसका मतलब यह है कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, सभी आयु वर्ग लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा समानताएं किसी भी तरह की किसी को नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बेसिक सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, यानी कोई भी व्यक्ति बाहर खुले में शौच करने के लिए बाध्य न हो उसकी ये सुविधा मिलनी चाहिए, यानी बेसिक चीजें होनी चाहिए। उसके बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए, हर गरीब आदमी को जितनी भी उसकी जरूरतें होती हैं बेसिक, सबसे पहला उद्देश्य था भारत सरकार का कि उनको कैसे हम दिया जाए। दूसरा था कि उनको स्वास्थ्य कैसे उनका सही किया जाए, सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण उनका सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन सबको प्राइमरी मिल रही थी लेकिन प्राइमरी एजुकेशन से कैसे आगे बढ़ा जाए, ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे स्कूल जाएं तो वो फिर आगे की शिक्षा ले सकें, सबसे बड़ी जरूरत थी। इस देश में लैंगिक समानता,
बिल्कुल
जेंडर इक्वलिटी, जैसे इस रिपोर्ट में भी आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को कहा जाता था कि कुशल महिला मजदूर हमारे देश में कम उपलब्ध होती हैं वनस्पति पुरुषों के, लेकिन इस रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के जो स्किलफुलनेस है वो बढ़ी है, यानी उनकी निपुणता, प्रवीणता, काम करने की दक्षता में सुधार हुआ है। और यह एक बड़ा संकेत है इस देश के लिए कि जिस वर्ग को हम हाशिए पर रखकर चलते थे महिलाओं को, उस वर्ग की भागीदारी इस देश के विकास में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा स्वच्छता, क्लीनलीनेस, जिसके लिए प्रधानमंत्री जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, जब से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से इस देश में स्वच्छता का एक कल्चर डेवलप हुआ है जो लोगों को यह बता रहा है कि स्वच्छता से क्या क्या मिल सकता है और हमें लगता है कि यह हर व्यक्ति तक पहुंचाने में यह सरकार सफल रही है।
बिल्कुल, आपने जैसा कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में इन मानों को रखा जाता है और इसमें आंकड़ा भी सामने आया है जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि जो सोशल प्रोटेक्शन है यानी सामाजिक सुरक्षा का दायरा है वो 2016 में करीब 22% आबादी तक थी, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं इन रिपोर्टों में उनके मुताबिक ये कवरेज 65% से भी ज्यादा आबादी तक पहुंचा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे ये संभव हुआ है और इसको कैसे मापा जाता है।
सतत विकास लक्ष्य का जो हमारे 17 तय किए गए हैं, ये 100% कवरेज होनी चाहिए, हर व्यक्ति को ये सुविधा मिलनी चाहिए, खासतौर से जिन्हें जरूरत है। और ये 22% से अगर 65% हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जिन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती थी, जिन एक सीमित दायरे में ही स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त सरकारी सबको मिला करती थी, जिनका दायरा बढ़ा है। जैसे आयुष्मान को अगर हम ले लें, आयुष्मान की सुविधा जो भी उसके योग्य होगा, दक्ष होगा, उसके लिए होगा, वो सबको उपलब्ध होने लगी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सबके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, सबके बच्चे को प्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सुविधा देने की सरकार कोशिश कर रही है कि हर तरह की सुविधाएं उन्हें मिले। इस देश में IIM, IITs और इस तरह के विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को इसमें कैसे समाहित किया जाएगा, सरकार ने इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई है, IIM की संख्या बढ़ी है, IIT की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजों में सीट्स की संख्या बढ़ी है। तो इससे क्या है कि ये दायरा बढ़ने का मूल वजह यह है। दूसरा है कि खाद्यान्न की सुविधा। आप सोचिए, इस देश में 2/3 आबादी को, यानी करीब करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज सरकार की ओर से मिलता है। इसका यह मतलब है कि जिन्हें जरूरत होगी मुफ्त अनाज की, उन्हें मुफ्त भी दिया जा रहा है, यानी सरकार किसी को भी भुखमरी का शिकार नहीं होने देगी। एक हमारे 17 जो गोल्स हैं, इसमें एक गोल भुखमरी का भी है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा इस देश में। जो हंगर इंडेक्स में हम कभी बहुत पीछे हुआ करते थे, उसी को देखते हुआ ये बात लाई गई कि भला हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है, खाद्यान्न सुरक्षा हमारी इतनी मजबूत है, सब कुछ सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति को उपलब्ध है। तो इससे क्या हुआ कि दायरा बढ़ गया।
बिल्कुल, आपने जैसा कि विस्तार से बताया कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की स्थिति में और मूलभूत सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे निश्चित तौर पर जो विकास के मानक हैं या संकेतक हैं वो ऊपर आए हैं। इसी तरह से आपने लैंगिक समानता की बात की, तो अपने श्रोताओं के साथ मैं ये आंकड़ा जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि 2015 से 17 के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 896 थी, जिसे हम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं, यानी जन्म के वक्त लैंगिक जो अनुपात होता है। जन्म के वक्त लैंगिक अनुपात बढ़कर 2022 से 24 में ये हो गया 918, और आगे आने वाले समय में इसके और तेज गति से बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से जो तकनीकी क्षेत्र में कौशल की हमने चर्चा की, उसमें महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में जो 48% थी, वो 2025 में बढ़कर 51% हुई। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ रोजगार पर। हमने इन रिपोर्ट्स में ये देखा कि जो पहले बेरोजगारी दर 6% थी, वो घटकर अब 3.1% के आसपास आ गई है। तो बेरोजगारी दर के घटने के किन कारणों को आप देखते हैं और कैसे ये संभव हो रहा है?
देखिए, बेरोजगारी का घटना, इस देश में सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंच रही हैं, सरकार जो सोच रही है वो लोगों तक पहुंचाने में सफल है। सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को कैसे रोजी और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार के मायने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, पहले तो इस धारणा से बाहर आना होगा लोगों को। और इस देश में सरकारी और गैर सरकारी के अलावा रोजी रोजगार छोटे उद्यमों को भी सरकार ने इस श्रेणी में रखा। छोटे मोटे रोजगार करने वाले, मान लीजिए किसी के यहाँ 5, 7, 6, 5 मतलब 10 से ज्यादा नहीं, इससे भी कम लोग काम करने वाले थे, तो पहले इनका नाम दर्ज नहीं होता था UPF में। सरकार ने कहा कि आखिर कैसे इसको आंकड़ा कैसे जुटाया जाए, किस मानक पर माना जाए कि ये लोग नौकरी इनको मिल गया, इम्प्लॉयमेंट मिल गया। इम्प्लॉयमेंट मिलने का जो मानक माना गया कि जिनका PF कटता होगा, यानी प्रोविडेंट फंड कटता होगा, भविष्य निधि में जिनकी कटौती होती होगी, उन्हें मान लिया जाएगा उन्हें नौकरी दे दी गई। अब होता यह था कि सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी देने में प्रॉब्लम एक आती थी, PF कटवाने के चक्कर में वो उद्यमी डरता था कि किसी नए आदमी को नौकरी दे दें हम और उसका PF कटने लगेगा तो सरकारी ढेर सारे हमारे पर नियम कानून लाद दिए जाएंगे और वो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, प्लस जितना PF कटता है उतना और हमें तनख्वाह वेतन देना पड़ेगा। सरकार ने एक नई योजना लागू की कि नहीं, जो भी आपके पास जितने दिन भी और जितने लोग भी काम करते हैं, कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, तनख्वाह कितनी देते हैं या आप तय करेंगे, न्यूनतम तनख्वाह से ज्यादा होनी चाहिए या न्यूनतम तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए, उसमें से जितनी आप PF कटेगा उतना सरकार आपको एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में, यानी उस उद्यमी के, यानी ताकि आपको अतिरिक्त बोझ न पड़े। इससे क्या हुआ कि हर उद्यमी इस बात के लिए खुश हो गया और अपने यहाँ जो भी लोगों को नौकरी पे रखता उनका PF कटने लगा। तो ऐसे में संख्या रोजगार की बढ़ी और वो जो डेटा दिख रहा है वो क्लियर कट बता रहा है कि रोजगार बढ़ा है।
बिल्कुल,
रोजगार बढ़ने की वजह और भी है कि आप देखें कि भाई PF तो नहीं कटता, आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ जो ब्लू इकोनॉमी है, इस गोल में एक चीज दिया गया है ब्लू इकोनॉमी को लेकर कि जल के नीचे की कैसे संरक्षित किया जाएगा। उसमें इन लोगों ने क्या किया कि भाई ब्लू इकोनॉमी हमारे देश में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमें उसमें रोजी रोजगार इस गति से बढ़ा है कि मछुआरों की जिंदगी में सुधार आया है, लोगों के जेब में पैसे जाने लगे हैं, और खेतिहर लोगों के खासों से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है।
बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया। और एक और बड़ा रोचक तथ्य यहाँ आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2014-15 में प्रति व्यक्ति जो नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आदि ऊर्जाओं को शामिल करते हैं, उसमें खपत जो थी वो 64 वाट थी प्रति व्यक्ति, वो बढ़कर अब 193 वाट पहुंच गई है। यानी अब नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हर व्यक्ति जो 2014-15 में जिस गति से करता था उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। आप कैसे देखते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम रुख कर रहे हैं जो कि पर्यावरण के लिए और विकास के लिए बहुत अहम है?
देखिए, भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है ना नवीकरणीय ऊर्जा, यानी जो वो ऊर्जा जो तेल यानी पेट्रोलियम, कोयला या ताप विद्युत गृह से नहीं आती थी, वो इन्होंने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइडल यानी पानी से, जिनमें इस तरह की ऊर्जा की खपत तेजी से इसलिए बढ़ी है कि अब उसकी बड़ी वजह है क्योंकि इसका जनरेशन शुरू हुआ पहले। भाई पहले ऊर्जा होगी तो खपत होगी ना। हमारे यहाँ सप्लाई पहले बढ़ाई गई। सप्लाई बढ़ाने का मतलब कि सरकार की योजना यह है कि हर घर की छत पर बिजली पैदा होनी चाहिए, हर किसान के खेत में बिजली पैदा होनी चाहिए यानी सौर ऊर्जा पैदा होनी चाहिए, ऊर्जा पैदा होनी चाहिए। जितने भी पंपिंग सेट लगेंगे, जितने भी ट्यूबवेल लगेंगे किसानों के खेतों में, हर ट्यूबवेल के ऊपर वो योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना के तहत यह है कि किसान के खेत में जो उसका पंप चलेगा वो सौर ऊर्जा से चलेगा या पवन चक्की से चलेगा। तो इसका मतलब है कि देश में लाखों की संख्या में कुसुम योजना के तहत, प्रोजेक्ट के तहत किसानों के खेत में अपने ही खेत से पैदा हुई ऊर्जा, यानी जो ऊपर की धूप है, धूप से पैदा हुई ऊर्जा से खेत की सिंचाई हो रही है, ट्यूबवेल चल रहा है, बाकी उसके काम हो रहे हैं। इसी तरह से हर घर में जो खपत होती है ऊर्जा की, अपनी छत पर आदमी लगा लेता है पैनल, सौर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल, और सोलर पैनल से बिजली आ रही है। बिजली से अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी बिजली खर्चा होती है उसके अलावा जो फालतू यानी सरप्लस जो बिजली पैदा होती है वो चली जाती है सरकार के नेटवर्क में, यानी बिजली कंपनी की ओर चली जाती है, यानी वो क्रेडिट हो जाती है उसके अकाउंट में। जब उसकी जरूरत होती है तब उसका वो खर्च कर सकता है, यानी बिजली की खपत भी करता है और उस बिजली को लोगों को बेचता भी है। ऐसे में खपत बढ़ती आज स्थिति यह हो जाएगी एक दिन आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमारे हर छत पर ऊर्जा पैदा हो रही है, सौर ऊर्जा पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हमारे पास सौर ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी दैन की जो हमारे अभी ताप विद्युत गृह और हाइडल से पैदा।
बिल्कुल, तो कई और संकेतक हैं, जैसे पर्यावरण के मामले में भी कई सकारात्मक नतीजे आए हैं। और एक खास विषय जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी किस तेजी से बढ़ी है, इसका उदाहरण हमें इससे मिलता है कि करीब 32 करोड़ लोगों के पास 2015 में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन था, जो बढ़कर अब पहुंच चुका है 98 करोड़।
इसके सीधा सीधा मतलब है, आप समझिए, पूरी दुनिया में जिस गति से डिजिटल ताकत बढ़ी है, लोगों में ताकत आई है, इस देश की सबसे बड़ी अगर मैं कहूं आधारभूत अगर मजबूती आई है तो वो आई है डिजिटल क्रांति से। इस देश में प्रधानमंत्री की ये योजना जो डिजिटल क्रांति आई है, चाहे वो जीवन के किसी भी हिस्से में आप देख लें, भाई आप डीबीटी कैसे होता है, डीबीटी बिना फोन के तो हो नहीं सकता, फोन में तब होगा जब इंटरनेट कनेक्शन होगा, इंटरनेट कनेक्शन कहां से आ रहा है, सरकार ने इतना सस्ता, दुनिया में इतना सस्ती डिजिटल सुविधा और कहीं नहीं है,
और पूरा इकोसिस्टम बना है,
पूरा इकोसिस्टम बन गया, हमारे जीवन का हर हिस्सा इसी से प्रभावित हो रहा है। हम बैंक का संचालन यहीं से कर रहे हैं, हम अपने घर के बैठे हुए यहीं पर सब कुछ देख रहे हैं। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है इस देश में। आप समझिए, हमारे एक जमाना था रूरल इंडिया, सबसे गरीबी का मानक क्या था मालूम है, कनेक्टिविटी का अभाव आदमी को गरीब बना देता था। कनेक्टिविटी के चलते आज छोटा सा छोटा उद्यम करने वाला व्यक्ति भी ज्यादा कमा रहा है। सिर्फ कनेक्टिविटी अगर उसकी आज कट कर दी जाए तो हमें लगता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कट जाएगा। सरकार ने यह इतनी बड़ी ताकत लोगों के हाथ में पहुंचा दी है, डिजिटल ताकत से हमारे देश के गरीबों का सबसे बड़ा उद्धार हुआ।
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सिंह साहब, कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से आपने इन पूरी रिपोर्टों पर अपना विश्लेषण रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
मंथन।